प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग तीन, लेक्चर नंबर 152। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए तवसाहूणं, सुरसुरनरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाति कर्मने प्रणमन करू धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वड़ी शेष तीर्थंकर ने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदुवाली हूँ मनुज क्षेत्रे वर्ततारहंतने अरहंतने सौ सिद्धने य नमस्करण करिए रीते गणधर ने अध्यापको ने सर्व साधु समूह ने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं हूँ साम्यनी जे नाथी शिव प्राप्ति बन। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उत्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए है। उसमें से अभी हम ये तीसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं और आए हैं अभी हम पृष्ठ संख्या 76 पर। 58 नंबर की हमने गाथा पढ़ी थी और अमृत चंद्राचार्य की टीका भी देखी थी। जयसेनाचार्य की हम टीका देख रहे थे। गाथा का अर्थ करके बाद उसका विस्तार बता रहे हैं। ये 76 पेज पर जयसेनाचार्य की टीका की 5वीं लाइन, वहां से हम पढ़ेंगे। यहाँ तो इंद्रिय ज्ञान है वो परोक्ष है, उसकी बात यहाँ चल रही थी कि इंद्रिय मन परोपदेश आलोक आदि, यानी इंद्रिया है, मन है, पर का उपदेश है, आलोक यानी प्रकाश इत्यादि बहिरंग निमित्त भूतात्, यानी ये उनमें बहिरंग निमित्त होते हैं, उसके कारण होने वाले। तथैव च, और किससे होता है, और कौन सा निमित्त पड़ा है, तो कहते ज्ञानावरणीय क्षोभशम जनित अर्थ ग्रहण शक्ति रूपाया उपलब्धे है अर्थावधारण रूप संस्काराच अंतरंग कारणभूतात सकाशात उत्पद्यते। और किससे होता है, तो कहते कि ज्ञानावरणी के क्षोभशम से उत्पन्न जो पदार्थों को जानने रूप शक्ति जो है उपलब्धि होती है, यानी कौन सी उपलब्धि, तो कहते अर्थ, अर्थ यानी पदार्थों को जानने की शक्ति, यानी पदार्थों को अवधारण करने रूप संस्कार जिसको कहा है वह है अंतरंग कारण। इनसे उत्पद्यते यानी बहिरंग और अंतरंग कारण बताया, उनके कारण ये जो उत्पन्न होता है क्या, यद विज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी इंद्रिय ज्ञान की बात चल रही है, उसमें बहिरंग और अंतरंग निमित्त बता दिया। तत् वह पराधीनत्वात् पराधीन होने से परोक्षम इति उच्यते, उसको परोक्ष कहते हैं। यदि पुनः पूर्वोक्त समस्त परद्रव्यम अनपेक्ष और यदि ऊपर बताए हुए सर्व परद्रव्यों की अपेक्षा से रहित केवल केवलात् शुद्ध बुद्ध एक स्वभावात्, यानी केवल शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव से परमात्मनः सकाशात्, परमात्मा से जो उत्पन्न होता है, ततः वह ततो अक्षनामानम अक्षनामानम आत्मानम प्रतीत्य, यानी वहां अक्षनाम से आत्मा समझना। अक्ष का एक अर्थ इंद्रिय भी होता है, एक अर्थ आत्मा भी होता है। तो आत्मानम प्रतीत्य वो रह गया ना, उत्पद्य मानत्वात होना चाहिए, उत्पद्य होना चाहिए ना, समुत्पद्यते है आत्मानम। एक मिनट, इस बात परमात्मा ने सकाशात उत्पत्ति तो अक्षम अक्षनामानम आत्मानम प्रतीत्य उत्पद्य मानत्वात्, प्रतीत्यो क्या है, प्रतीत्येत्पद नहीं, प्रतीत्योत्पद्य मानत्वात्, मैंने प्रतीत्य उप उत्पद्य मान, एक शब्द वो त्ये हुए ना, उसको त्यो करना, प्रतीत्योत्पाद, एक शब्द करना है और ते का त्यो करना, प्रतीत्यो, हाँ त्यो करना और वो जोड़ देना, प्रतीत्योत्पद्य मानत्वात, यानी प्रतीत्य उत्पद्य मानत्वात, प्रत्यक्षम भवती, प्रत्यक्ष होता है, इति सूत्राभिप्राय, यह सूत्र का अभिप्राय है। अभी हम गुरुदेव का प्रवचन पढ़ेंगे, ये पृष्ठ संख्या 78 से शुरू होगा। वो कैंसल दबाते तो भी चालू हो जाता है, ते नंतर करू कंटिन्यू, नाव पण नंतर देऊयात। हाँ अभी यहाँ दबाना आपको लगा के अभी कोई आया बीच में तो बैक को जाना, बीच में कुछ आया तो बैक को जाना, बैक बैक नीचे, हाँ ठीक है। अभी हम शुरू, अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट करना है। हाँ देखो 78 पृष्ठ है, गुरुदेव का प्रवचन शुरू करते हैं। ये इंटरनेट बंद हुआ था बीच में, फिर शुरू हुआ है। हाँ पढ़ते यहाँ पर देखो, टीका, निमित्तता को प्राप्त यानी निमित्त रूप बने हुए ऐसे जो परद्रव्य भूत अर्थात जिस ज्ञान में ये परद्रव्य स्वरूप जड़ इंद्रियों निमित्त बनती है, जिस ज्ञान में भगवान और भगवान की वाणी भी निमित्त बनती है। परोपदेश भी आया था ना, भगवान यानी तीर्थंकर भगवान कहो और उनकी वाणी, ये जिसमें निमित्त है वह इंद्रिय ज्ञान है, वह ज्ञान परोक्ष है। निमित्त रूप बने हुए ऐसे जो परद्रव्य भूत, कौन कौन से, भी अंतकरण ने मन, मन है, इंद्रिया है, मन है, मन है, मन के अवलंबन से होता है वह परोक्ष है, इंद्रिय से होता है वह परोक्ष है, परोपदेश, पर के उपदेश से जो ज्ञान होता है वह परोक्ष है। त्रिलोकनाथ समोसरण में विराजते हैं और दिव्य ध्वनि छूटती है, उसे सुनते हैं, परंतु वह सुनना वह भी परोपदेश पराधीन है, क्योंकि इंद्रियों का निमित्त भी है, परोपदेश भी वहां निमित्त रूप से है। परोपदेश है कि नहीं? परोपदेश तो भगवान का उपदेश आया कि नहीं, वह पराधीन है। उपदेश से ज्ञान हुआ वह परोक्ष है, और वह ज्ञान ज्ञान नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, और ये इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान ही नहीं गिना, परोक्ष है। जिस ज्ञान में वो टीका के बाद शुरू हुआ था ना, ने उनके इसमें जो हमने कल पढ़ा था ना पहले, उसके बाद हो शुरू। जिस ज्ञान में निमित्त रूप बने हुए ऐसे जो परद्रव्य भूत अंतःकरण ने मन, यह मन जिस ज्ञान में निमित्त है वह भी परोक्ष ज्ञान है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं। मन से ज्ञान होता है वह भी आत्मा को स्पर्श किए बिना होता है, यानी वो आत्मा से डायरेक्ट नहीं होता है, मन का निमित्त बना है वहां पर। ऐसा समझने के लिए कब निवृत्त हो? आहा, भगवान का उपदेश वस्तु ऐसी है, कठिन कहो या सत्य कहो, जो है यह है। अभी तो ब्रह्मचर्य पालो, बाहर की इंद्रिय का ज्ञान, दयादान, व्रत पूजा और यात्रा करो तो धर्म होगा, ऐसा कहते हैं। धूल भी धर्म नहीं है, वह तो राग है, और उस ओर का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। भगवान जानने में आए, गिरनार में, शत्रुंजय में हो, सम्यक शिखर हो, ये सब जानने में आया, वह तो इंद्रिय ज्ञान है। श्रोता पूछते, प्रतिमा जी का ज्ञान होता है वह? अरे साक्षात भगवान को भी लिया तो ये प्रतिमा जी की क्या बात है? वह भी इंद्रिय ज्ञान है, आंख से होता है, सूक्ष्म बात है भाई। यहाँ परमात्मा कहते हैं, निमित्तता को प्राप्त, यानी वो निमित्त हुए, निमित्त पने को प्राप्त हुए, निमित्त रूप बने हुए ऐसे जो परद्रव्य भूत, कौन कौन उसमें लिए? अंतःकरण ने मन, ज्ञान करने में मन निमित्त रूप होता है, इंद्रिय निमित्त रूप होती है, परोपदेश निमित्त रूप है, उपलब्धि, नीचे अर्थ दिया है, ज्ञानावरणीय वर्णीय हुआ, वर्णीय और नीय चाहिए, नई हुआ है, हाँ, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभसम के निमित्त से उत्पन्न पदार्थों को जानने की शक्ति, यह लब्ध शक्ति जब उपयुक्त होती है, क्या कहते हैं? लब्धि यानी वो क्षोभसम रूप जो उघाड़ है उसको लब्धि कहते हैं, वो जब उपयुक्त होती है तभी पदार्थ ज्ञात होता है, यानी लब्धि भी चाहिए और उसके साथ उपयोग, तब वो पदार्थ का जानना होगा। ज्ञानावरणी का क्षोभसम अपनी पर्याय की योग्यता से हुआ, परंतु वह परतरफ का भाव है। आहा, अपना ज्ञान स्वरूप भगवान निरालंबी, पर के आलंब रहित, ऐसे सीधा आत्मा का ज्ञान का अवलंबन लेते हैं तो वह ज्ञान है, बाकी जो इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं है, ऐसा कहने में आता है। श्रोता, आत्मग्राह्य शब्द कठिन लगता है। गुरुदेशी, आत्मा स्वयं वस्तु है, वही ग्राह्य है, इंद्रिय ज्ञान तो अग्राह्य है, ऐसी बात है। वितराग मार्ग जगत से अलग है, जगत में ऐसा कहीं है ही नहीं। बाहर से मान लिया है कि ऐसे धर्म होता है, ऐसे धर्म होता है, यात्रा भक्ति आदि सब इंद्रिय के विषय है। श्रोता कहते हैं, शास्त्र पढ़ना वह भी इंद्रिय ज्ञान है? वह भी इंद्रिय है, शास्त्र वाचन से जो ज्ञान होता है वह भी इंद्रिय ज्ञान है। यहाँ आया ना निमित्तता को प्राप्त, अर्थात निमित्त बने, निमित्त है, भगवान की वाणी निमित्त है, भगवान भी निमित्त है। समोशरण में जाते हैं और सुना है, वह भी निमित्त से सुना है, वह ज्ञान ज्ञान नहीं। समोशरण में भी अनंत बार गया, जब महाविदेह में जन्म लिया तो वहाँ महाविदेह में तो तीर्थंकर भगवान कायम रहते हैं, महाविदेह में तीर्थंकर का विरह होता नहीं। हमेशा 20 तीर्थंकर जाए तो दूसरे 20, तीसरे 20 होते हैं, अनंत 20, ये तो मिनिमम है। और मैक्सिमम कितने हो गए? 170 तो भरत ऐरावत के मिलकर, विदेह में तो 100। हाँ, क्योंकि एक मेरु संबंधी 32 विदेह है, हर जगह एक एक हो गए कहीं कभी, तो सब मिलकर 5 है ना, 5 मेरु के इंटू 32 160 होते। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, 160। भगवान तो अभी विराजते हैं, वहां महाविदेह में अनंत बार जन्म लिया है, आहा, तो समोसरण में भी अनंत बार गया है, लेकिन वह सब ज्ञान निमित्ताधीन हुआ। भगवान को देखकर खुश खुश हो गया, हाँ, उनकी वाणी सुनी हमने तो साक्षात भगवान को सुना, परंतु वो सुनने तक रखा, आत्मा को लक्ष्य करना था, वो रह गया, निमित्त रूप बने हुए देखा। परोपदेश भी निमित्त रूप बना हुआ है, सुना हुआ ज्ञान है, वह निमित्त रूप से ज्ञान हुआ है, यानी सुनाने वाला भी निमित्त और इंद्रिया भी निमित्त, क्षोभशम भी निमित्त, उपयोग भी निमित्त, कितने और सब लगा ले रहे उसमें, यानी कितनी पराधीनता है, है ना। देखो परोपदेश में वहां किसी का उपदेश है, वो भी तुम चाहे तो भी मिलेगा क्या, वो भी अपने अधीन नहीं है, तो परोपदेश हुआ। अभी उसको तो हमने इंद्रियों के द्वारा सुना, तो इंद्रिया भी होनी चाहिए वो ठीक ठाक, उसका भी निमित्त बना। अभी वहां तो केवल इंद्रिय ज्ञान है, उसमें भी क्षोभशम रूप होना चाहिए, उघाड़ होना चाहिए, और केवल उघाड़ होके फायदा नहीं है, और कहीं जानने में देखने में रुक गए तो सुनना रह गया, तो वो भी निमित्त। इसलिए इतना पराधीन जो कहा है ना इंद्रिय ज्ञान को, तो कहते अपने स्वभाव से नहीं, उपलब्धि पूर्व का संस्कार अर्थात थोड़ा क्षोभशम हो, वह भी पर का क्षोभशम है, उससे ज्ञान नहीं होता। संस्कार है, पूर्व का संस्कार है, वो इसमें लिया है अमृतचंद्राचार्य की टीका में, संस्कार की बात ली थी उन्होंने, तो पूर्व संस्कार वो धारा रूप से उतनी चल रही है, परंतु वो उपयोग में ले तो उसका उपयोग, तो उसकी उपलब्धि होगी तब उसको कहेंगे वो संस्कार से हुआ, वो भी निमित्त में चला जाएगा। पूर्व का संस्कार है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं है। श्रोता आप तो कहते हो संस्कार जमाओ, गुरुदेव श्री संस्कार जमाओ, इसका अर्थ कि अंदर ज्ञायक है, ज्ञायक है, उसमें पर की अपेक्षा नहीं है, है बात, सूक्ष्म बात है भाई। त्रिकाली ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा चैतन्य ज्योत, ये जो संस्कार की पहले बात आई थी तो बारंबार अभ्यास किया कितना स्वसन्मुखता का, और उसके संस्कार तो उपयोगी है ऐसा कहते हैं। स्वयं ज्योति सुखधाम जो है ना, चैतन्य ज्योत मिला, पेज नंबर 79 नीचे का पैराग्राफ, गुरुदेव श्री की बात पढ़ रहे हैं, तीसरी लाइन, स्वयं चैतन्य ज्योति और आनंद का धाम प्रभु आत्मा है, उसका अंदर में संस्कार डालना, मैं तो यह हूँ यह हूँ, पर की अपेक्षा बिना। केवल वो इंद्रिय ज्ञान जो सुना हुआ ज्ञान, उसके संस्कार की बात नहीं है, ये स्वसन्मुखता है, अपने लक्ष्य से जो ज्ञान हुआ उसके संस्कार डालने, उसकी बात करें। सूक्ष्म बात है भाई, यहाँ तो कहते हैं कि संस्कार हो तो भी वह पर का आश्रय हुआ, क्योंकि वो तो इंद्रिय ज्ञान संबंधी संस्कार है, वो तो पर का आश्रय हुआ।
लेकिन वो संस्कार तो उसी के ज्ञानी के पास ही होगा ना, ज्ञानी के पास तो नहीं होगा।
कौन सा? स्वसन्मुखता का, वो तो ज्ञानी के लिए होगा। यानी यहाँ जो श्रोता ने पूछा था ना, आप तो कहते हो कि संस्कार डालो, उस संस्कार की बात है, कौन से संस्कार डालो? स्वसन्मुखता के संस्कार डालो, संस्कार नहीं, उसका बारंबार अभ्यास करेंगे, ये बात पहले एक बार आई थी। प्रकाशादिक है, प्रकाश आदि मिले, जो इंद्रिय ज्ञान में निमित्त प्रकाश आदि मिले, दीपक का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो, उनके द्वारा होने वाला जो स्व विषयभूत पदार्थ का ज्ञान, जो पदार्थ अपना विषय है, वह पर के द्वारा प्रादुर्भाव को प्राप्त होने से, प्रादुर्भाव ने उत्पन्न होना अर्थात पर के द्वारा प्रकट यानी उत्पन्न होने से संस्कार है ना, अंदर संस्कार का नीचे अर्थ नीचे दिया है, संस्कार यानी पूर्व ज्ञात पदार्थ की धारणा। हमने देखा था मति ज्ञान होता है इंद्रिय ज्ञान, तो उसमें पहले में पहले अवग्रह है, फिर ईहा, बाद में अवा यानी नक्की जान लिया क्या है, और उसके दृढ़ संस्कार है कि जो कालांतर में भी हम स्मरण में ला सकते हैं, वो चलती है धारा, इसको कहते वो धारणा तक पहुंचा है, तो उसकी जो धारा चलती है हर ज्ञान की पर्याय में, हर ज्ञान की पर्याय जुदी जुदी, पर उतना जानना उतना जानना उतना जानना रूप वो चल रहा है तो उसको कहेंगे संस्कार, यानी पूर्व ज्ञात पदार्थ की धारणा, पूर्व में ज्ञात पदार्थ की धारणा की हो तो वह धारणा को भी निमित्त कहा। शास्त्र संबंधी धारणा की है ना हमने, आत्मा की नहीं। हाँ, अपना स्व का ज्ञान करने में बिल्कुल मदद रूप नहीं है, यानी वो धार, क्योंकि हमने देखा पूर्व भव की भी देशना काम कर लेती है, तो संस्कार रूप से धारणा में तो पकड़ा था तभी तो यहाँ उपयोग रूप हुआ, परंतु वो भी सुना हुआ था, इंद्रिय ज्ञान था, वो भी परोक्ष था, इसलिए उसको भी निमित्त रूप में डाल दिया। भगवान आत्मा चिदानंद स्वावलंबी प्रभु, उसका ज्ञान करने में सुनने का ज्ञान हुआ, उपदेश से हुआ, संस्कार में हुआ, उनके द्वारा होने वाला जो स्व विषयभूत पदार्थ का ज्ञान, स्व विषयभूत यानी इंद्रिय का अपने अपने विषय का ज्ञान हुआ, वह पर के द्वारा प्रादुर्भाव को प्राप्त होने से, यानी पर के द्वारा उत्पन्न होने से उत्पन्न हुआ, 11 अंग की धारणा हो गई। क्या कहा, 11 अंग बिल्कुल पढ़ लिया और वो धारणा में भी ले लिया। अब जो श्लोक सुनकर कंठस्थ हुए, परंतु वह तो पर के द्वारा प्राप्त हुआ है, अपने भगवान आत्मा के आश्रय से नहीं हुआ है, आत्मा के लक्ष्य से नहीं हुआ, आत्मा के आश्रय से नहीं हुआ, आत्मा द्वारा डायरेक्ट उत्पन्न नहीं हुआ है, वह निमित्त है, ऐसी बात है, निमित्त है, लेकिन निमित्त से तो पराश्रय हुआ, पराश्रय व्यवहार है और व्यवहार है ये हो गया। इस प्रकार पर के द्वारा प्रादुर्भाव को प्राप्त होने से परोक्ष के रूप में जाना जाता है, ये सब ये परोक्ष में डाला गया है। अब प्रत्यक्ष की बात करेंगे। परद्रव्य की अपेक्षा रखे बिना आत्मा को अपने को ही जानना है तो उसमें और किसकी क्या आवश्यकता है, वो स्वयं ज्ञानमय है और हर समय जानने का कार्य हो रहा है, तो स्वयं ही अपने को जान लेते। तो कहते परद्रव्य की अपेक्षा रखे बिना, अब प्रत्यक्ष की बात करते हैं। पहले परोक्ष की बात कही, उपदेश प्रकाश इंद्रिय मन से मात्र उस विषय संबंधित ज्ञान होता है, वह सब परोक्ष ज्ञान है, सच्चा ज्ञान नहीं है। प्रकाश आदि जो है, प्रकाश आदि जो कहे, कहा ना मन इंद्रिय संस्कार उपलब्धि परोपदेश, उन सब परद्रव्य की अपेक्षा रखे बिना, ये जो जो हमने अभी गिने थे निमित्त रूप से, उसकी अपेक्षा बिना, इसमें सब आ गए, चार बोल है ना, मन के अवलंबन बिना, इंद्रिय के अवलंबन बिना, परद्रव्य के अवलंबन बिना, परद्रव्य को सुने उसके अवलंबन बिना, परोपदेश बताया था ऊपर है ना, सब परद्रव्य की अपेक्षा रखे बिना तो कैसे होगा। एकमात्र आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके, इसमें भी आता है ना वो मुक्षमार्ग प्रकाशक में हरिहंत भगवान की जो परिभाषा बताइए, आत्म स्वभाव कारण क्या आत्म स्वभाव निज स्वभाव साधन द्वारा साधन बताया उसको निज स्वभाव को ही साधन बनाया यही साधन है लेकिन एकमात्र आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके उसको कारण कहो साधन कहो एकमात्र आत्म स्वभाव को ही मन का अवलंबन नहीं क्योंकि मन के द्वारा विकल्प करना वो साधन नहीं हो सकता वो कारण नहीं हो सकता उससे आत्मा का अनुभव नहीं होगा इंद्रिय का नहीं सुनने का नहीं परोपदेश नहीं संस्कार नहीं ये सब किस में जाते हैं निमित्त में चले जाते हैं क्योंकि ऐसा प्रश्न है अरे बिना देशना के कैसा होगा सम्यक दर्शन ज्ञानी के देशना तो आवश्यक है ही है वो तो देशना लब्धि के प्रकरण में आता है परंतु वो निमित्त रूप से चले जाते हैं देशना लब्धि तो ज्ञान की पर्याय है परंतु वो भी कौन सा ज्ञान है वो भी इंद्रिय ज्ञान हुआ परलक्षी ज्ञान हुआ परलक्षी ज्ञान हुआ उससे आत्मा का ज्ञान होगा ऐसा नहीं है तो जब वो ज्ञान में लिया उसने उसका भी लक्ष्य छोड़कर वो आत्म स्वभाव को ही उसको ही पकड़ेगा उसी के द्वारा उसको आत्मा का अनुभव होगा ये कहना चाहते हैं
अभी जो निज स्वभाव साधन द्वारा की जो बात करी थी वो मोक्ष मार्ग का
प्रकाशक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो बोला ना मैंने पहले अधिकार में शुरुआत में ही बताया
पहले प्रकरण में मतलब
निज स्वभाव अरिहंत के स्वरूप में बताया बताया अभी मैंने हमें लगता है कि वो वहां तो जो हमने बहुत सारी बातें टोडरमल जी के द्वारा पढ़ी है परंतु देखो ना वो कितनी सहज रूप से लिख देते हैं निज स्वभाव साधन द्वारा अब यहाँ कितना खोल खोल कर बताया उसको आत्मा स्वभाव से ही अपने के द्वारा जब वो ज्ञान करेगा तब उसको आत्मा का अनुभव होगा यहाँ लिखा ना एकमात्र आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके यानी ये सभी निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर बस आत्म स्वभाव में ही एकाग्र हो गया तो वो जो उत्पन्न होगी पर्याय आत्मा को जानते हुए उत्पन्न होगी तो कारण रूप से ग्रहण करते अर्थात भगवान त्रिलोकीनाथ परमात्मा अपना स्वरूप कारण परमात्मा जो है देखो पर्याय में परमात्म दशा प्रकट होती है उसका कारण कौन है तो स्वभाव उसी को कारण परमात्मा कहा तो कहते अपना स्वरूप कारण परमात्मा जो है उसका आश्रय से उसका अवलंबन से सर्व द्रव्य पर्यायों के समूह में एक समय ही व्याप्त होकर यहाँ केवल ज्ञान लेना है ना देखो ये परिपूर्ण स्वभाव जो प्रकट हुआ है पर्याय में उसकी बात है क्या कहा ये जो अभी कारण किसको लिया आत्म स्वभाव को कारण रूप से ग्रहण किया तो क्या उत्पन्न हुआ सर्व द्रव्य पर्यायों के समूह में यानी सभी द्रव्य उनके पर्यायों सहित सब द्रव्य एक समय में ही व्याप्त होकर ये द्रव्य व्याप्त हुआ यानी व्यापक है पर्याय में वो व्याप्त हो गया है यानी केवल ज्ञान की पर्याय हुई है इसलिए कहा सर्व द्रव्य पर्यायों के समूह में अनंत आत्माओं अनंत परमाणुओं सभी द्रव्य लेना हाँ धर्म द्रव्य कितने लेने धर्म द्रव्य कितने लेने मैंने पूछा
कितने
एक है और काल द्रव्य काल द्रव्य कितने हैं फिर से एक हमने कितने हैं पूछा है संख्या पूछ लोक प्रमाण संख्या उसके क्षेत्र कितने है तो एक प्रदेश ही है हाँ देखो अनंत आत्माओं अनंत परमाणु उसकी अनंती पर्याय उसके अनंत गुण देखो हरेक द्रव्य में अपने अपने अनंत गुण और अनंत गुणों की एक एक समय की एक एक पर्याय ले लो तो तीन काल की पर्याय ये द्रव्य पर्याय का समूह है उसमें एक समय ही व्याप्त होकर एक समय में इन सबको जान लेते हैं एक क बोलने में असंख्य समय जाते हैं उसके एक समय में सर्व व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान यानी सब में व्याप्त होने वाला जो ज्ञान है ना केवल ज्ञान वह केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष के रूप में जाना जाता है केवल ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। पूर्ण रूप की बात कही लेकिन अंदर में प्रत्यक्ष है। ये पांच की अपेक्षा बिना, कौन से पांच लिए? मन लिया, इंद्रिय लिया, परोपदेश लिया, वो प्रकाश दिया और संस्कार भी लिया, ये सब के बिना एकमात्र आत्म स्वभाव को कारण रूप से ग्रहण करके सर्व द्रव्य पर्याय के समूह को एक समय में प्राप्त होता है, यानी एक समय में सबको जान लेता है। निश्चय से तो एक समय में सब जानने की शक्ति उपयोग क्रमिक होता है, श्रुत ज्ञान परोक्ष है, लेकिन एक समय में ही जानने की ताकत है। परंतु स्व के आश्रय से हो वह, तो वह परोक्ष नहीं रहा, प्रत्यक्ष हुआ। आत्मा को जाना इसलिए प्रत्यक्ष है, यानी आत्मा के द्वारा आत्मा को ही जाना है, कोई भेद किए बिना वो तो स्वभाव भाव को ले गया। प्रवर्तमान ज्ञान वह केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ऐसा सुनने मिले नहीं तो उसे समझे कब? आहा, दुनिया की मजदूरी की, फिर मरकर चाहे चार गति में रखड़ने। यहां तो कहते हैं परोपदेश का भी अवलंबन नहीं, भगवान की वाणी सुनने से भी आत्मज्ञान नहीं होता, क्योंकि वाणी तो सब सुनते हैं, सबको थोड़ा ही होता है, और अनंत बार सुना ऐसा शास्त्र में आता है। आत्मज्ञान कहा ना, आत्मज्ञान अर्थात आत्मा जो ज्ञायक स्वरूप है उसका ज्ञान, पर का ज्ञान नहीं, इंद्रिय का ज्ञान नहीं, मन का नहीं, राग का नहीं, एक समय की पर्याय का नहीं, आत्मज्ञान अर्थात आत्मा पूर्ण है उसका ज्ञान। उसका आश्रय लेकर जो ज्ञान हुआ उसको पर की अपेक्षा छूट गई, इसलिए यहाँ ज्ञान प्रत्यक्ष कहने में आता है। आहा, कठिन पड़े, क्या हो, मार्ग तो ऐसा है भैया। स्व आश्रय निश्चय, पराश्रय व्यवहार। पराश्रय व्यवहार सब हेय है और स्व आश्रय निश्चय उपादेय है, यह महासिद्धांत है। समय सार 272 का था। श्रोता कहते व्यवहार करते करते निश्चय होगा। गुदेशी
कलश है, कलश माने कहां टीका में ये उनका वाक्य है, अमृतचंद्राचार्य
ये जो 272
गाथा के टीका में पता
है,
टीका में अमृतचंद्राचार्य ने बताया है। कहते व्यवहार करते करते बिल्कुल होगा नहीं, व्यवहार परंपरा कारण कहाँ है, उसका कारण दूसरा है। परंपरा कारण उसको कहते हैं वो मिटकर, वो नष्ट होकर, उसका व्यय होकर शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, तो उसको परंपरा कारण कहने में आता है। और वो भी व्यवहार किसको कहेंगे, जो ज्ञानी के होता है उसको कहेंगे, अज्ञानी को व्यवहार ही नहीं है। हाँ, परंपरा कारण कहा उसका कारण दूसरा है। अनुभव में साथ में राग है ना, जो अनुभवी है, ज्ञानी है, जिसको आत्मा का अनुभव है, अभी वो तो साधक है, अभी तो गृहस्थ है, मुनि है, तो वहां राग है वर्तमान में, तो साथ में राग है, तो वर्तमान में सहचारी साथ में है, इस अपेक्षा से राग को किसके, जिसको निश्चय अनुभव है उसको परंपरा कारण कहने में आया। किसके, जहां निश्चय प्रकट है उसको राग है, उस राग को व्यवहार कहा और उसको परंपरा कारण कहा, क्योंकि अभी निश्चय प्रकट है तो अभी आगे चलकर वो तो परिपूर्ण वितराग होने वाला है, और वहां जो राग भाव है वो तो उसका नाश हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, इस अपेक्षा से उसको परंपरा कारण कहते हैं। वह भी जब पूर्णानंद का नाथ में पूर्ण अनुभव करेगा तब राग भी छूट जाएगा, तब निश्चय से तो स्व के आश्रय से ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है, व्यवहार से भी उत्पन्न होता नहीं, व्यवहार के नाश से उत्पन्न होता, व्यवहार से नहीं होता। ऐसा कठिन है, यहाँ तो सब जगह यही सुनने को मिले, ये करो ये करो ये करो, व्रत करो, उपवास करो, तपस्या करो, और कुछ करने में ही धर्म मान लिया लोगों ने। कहाँ तपस्या थी बापू? भगवान आत्मा अंदर चैतन्य ज्योत विराजता है, उसके समीप जाने से, अंदर वास करने से उपवास होता है, बाकी तो सब अपवास है। अपय ने अनिष्ट वास है, निवास है। आहा, यहाँ कहते हैं केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष के रूप में जाना जाता है। बात तो कठिन है लेकिन वस्तु तो ऐसी है। आहा, देह तो जड़ है, तो इंद्रिया जड़ है, भावेंद्रिय है, वह भी वास्तव में तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो परिपूर्ण जानने का है। और इंद्रिय का विषय जो है वह कोई आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का विषय जो है वो तो पर पदार्थ है, पुद्गल है। तो ऐसा भी आया जो क्षोभम है उससे भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अंदर क्षोभम अर्थात ज्ञान का जो थोड़ा विकास है उससे भी आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान तो स्व के आश्रय से, क्षोभम के आश्रय बिना यानी अवलंबन बिना सीधा परम स्वभाव भाव, ज्ञायक भाव, नित्य भाव, आनंद भाव प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु के अवलंबन से ज्ञान होता है। आत्मा के आश्रय से ज्ञान हो वह ज्ञान है, यह धार्मिक ज्ञान है। इंद्रिय का ज्ञान अधर्म का ज्ञान है। कठिन बात है भाई। यह इस गाथा में सहज सुख का साधन भूत है, ऐसा यही महाप्रत्यक्ष ज्ञान इच्छनीय माना गया है, मैंने प्रकट करने योग्य। केवल ज्ञान सहज सुख का साधन भूत, ऐसा यही महाप्रत्यक्ष ज्ञान इच्छनीय नाम भावना करने योग्य उपादेय माना, इच्छनीय नहीं उपादेय, प्रकट करने योग्य। अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद का कारण होने से वही भाव आदरणीय है, अन्य कोई कारण नहीं है सुख का, वो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रिय ज्ञान भी आदरणीय नहीं है। हा हा, संस्कार संसार की ये सब शिक्षा पाते हैं, LLB MA BA ये सब कुज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, दुख रूप है। LLB डॉक्टर का सब ले लिया, अभी इसको उपलक्षण कहते हैं, एक बता दिया सब जान लो, संसार की सब शिक्षा उसमें आ गई। हाँ, किसी को छोटा नहीं, इंजीनियरिंग डॉक्टर मेडिकल सब कुछ आ गया। कहते वह रुपए देता है, क्या कहते है? वो लौकिक ज्ञान तो रुपए देता है, रुपए वह नहीं देता। वह तो पूर्व के पुण्य हो तो आता है, क्योंकि बिना पढ़ाई की करने वाले के भी बहुत, वो कोई अंगूठा छाप होते हैं, वो पहले बात आती थी ना। तो के वह यानी लौकिक ज्ञान से रुपया नहीं आता है, पूर्व के पुण्य हो तो आता है। देखो ये जो लौकिक पढ़ाई है ना, आज आया था ना समय सर, हम पढ़ रहे थे दोपहर में, ये जो वर्तमान का क्षोभम है, हम कहते नहीं नहीं हमने इतनी मेहनत की और हम डॉक्टर हो गए, कोई इंजीनियर हो गए, कोई MA LLB हो गया, तो कहते ये तो यही जो वर्तमान का क्षोभम का उघाड़ है वो पूर्व जो पुण्य बांधा था, क्योंकि क्षोभम कर्मों का क्षोभम है, उसका जो कितने रूप से उघाड़ है क्या है वो तो पूर्व में बंधा हुआ, वो अभी उघाड़ रूप है, उसका उदय चल रहा है। ये तुम्हारे बुद्धि से नहीं किया, तुम्हारे बुद्धि से तुमने डिग्री नहीं लिए कह रहे, ये तो क्षोभम से हुआ है। उसमें भी पूर्व का पुण्य लिया उन्होंने। हाँ, मिलेगा क्या उसमें? हाँ, पढ़ूंगी मैं उसे, यानी वो मानते ना वो बुद्धि के, ये बुद्धि का भी उसका अभिमान है, तो वो भी पूर्व के पुण्य से आया हुआ। देखते वो सब इंद्रिय ज्ञान है, दुख रूप है, यहाँ कहा ना वह रुपये देता है, रुपये वह नहीं देता, यानी लौकिक ज्ञान है वो भी पुण्य के उदय से आया है और रुपये आए वो भी पुण्य,
वो भी निमित्त का कथन।
हाँ पुण्य पुण्य भी अलग अलग निमित्त से ही है ना, पुण्य भी अलग अलग हो गए कि नहीं, कि तो बुद्धि संबंधी जो जो क्षोभ का जो हुआ है, जो पंचेंद्रिय संबंधी मन संबंधी उघाड़ है वो भी उसमें भी ज्ञानावरणीय की जो अवस्था हुई है उसमें भी पूर्व का पुण्य निमित्त है। अभी मिलेगा क्या?
गुरुदेव का छठी बार का प्रवचन?
हाँ छठी बार का है।
मेंसी बेद ने लिखे?
हाँ
मेंसी बेद ने खास करके लिखा, उसने तो
ऐसे यहाँ लिखा है, बेंसरी बेद ने लिखा है।
आप बोले छठी का था वही,
छठी नहीं उन्होंने बताया छठी बार,
छठी बार,
छठी बार की बात है। चलो वो बाद में देखेंगे, अभी ये चर्चा मत ही उसके पहले होगा। हाँ देखो देखो सब अंडरलाइन ही है पूरे पेज, पेज नंबर 266 वहीं से शुरुआत की थी आज हमने, बड़ी लाइन अच्छे 296 तक आए थे, 30 पेजेस। हाँ प्रश्न ये मैं 266 पेज है वो समय सार के प्रवचन जो है छठी बार वाले। प्रश्न बनवा न जाए तो ज्ञान, अच्छा आप पढ़े मैं पढ़ूंगी क्योंकि इसमें दुस्सना ही नहीं देगा। बनवा न जाए तो ज्ञान नो उगाड़ केम था है? क्योंकि हम अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में इतने सब लाखों रुपया खर्चा करके जाते हैं ना, यानी कोई पढ़ने नहीं जाएगा तो बुद्धि का विकास कैसे होगा, ये प्रश्न। बनवा न जाए तो ज्ञान नो उगाड़ केम था है? ये प्रश्न था। गुरुदेव उत्तर देते हैं, जे पूर्वनो उघाड़ लेने आयो छे, अभी यहाँ जन्मा है मनुष्य में तो ज्ञानावन का क्षोभम लेके आया है ना, वो तो उघाड़ लेने आयो छे, तेने भणवानी वृत्ति आया विना रहे नहीं। कितना पड़ेगा क्या पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान की प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, ये निमित्त भी वो पूर्व का है। पैसा कमावानी इच्छा, सांसारिक भणवानी इच्छा, ते नवा अशुभ भाव छे। ये सब पढ़ाई बड़ी बड़ी करे ना, ये नवा अशुभ भाव छे। पैसा नी प्राप्ति अने लौकिक ज्ञान नी प्राप्ति ते वर्तमान पुरुषार्थ नु फल नथी, पण ते पूर्व नु फल छे, पूर्व नु पुण्य छे। परंतु वर्तमान मा स्व तरफ वळन करी भान करे तो ते वर्तमान नवा पुरुषार्थ थी थई शके छे। ये लौकिक जो पढ़ाई है जो पैसा है वो उसमें कोई पुरुषार्थ काम नहीं होता है। बाह्य संयोग ने प्राप्ति थवी ते पूर्वना पुण्य ने आधीन छे, पण अंतरमा साची समझन नी रुचि नो पुरुषार्थ, रुचि का पुरुषार्थ ते पूर्व कर्म ने आधीन नथी। ये रुचि कोई कर्म के आधीन है वो अपने से होती है। संसार खातर जेटलो राग करे छे ते ऊंधो पुरुषार्थ छे। जैसा पुरुषार्थ होगा उस पर्याय संबंधी पुरुषार्थ कर रहा है वैसा फल मिलेगा, उसको उल्टा कहेंगे, क्योंकि हम सीधा किसको कहेंगे, जो मोक्ष के लिए होगा वही सीधा होगा। तेनु फल नवु बंधन छे। बाह्य सामग्री मेळवा माटे राग द्वेष मोह करे ते वर्तमान ऊंधा पुरुषार्थ नु फल नवु बंधन थाय छे। राग द्वेष एनी मेळे थई जता नथी के कोई पराणे करावतु नथी, पण पोते बुद्धिपूर्वक ते करे छे, क्योंकि उसमें वो स्वयं उसमें अच्छा मान मान कर कर रहा है। तेथी वर्तमान राग द्वेष थाय ते ऊंधा पुरुषार्थ बड़े थाय छे। बहुत बातें हैं अभी पढ़ने जैसी, अभी अपना विषय चलेगा। हाँ देखो हम यहाँ पढ़ रहे थे 82 पेज पर, लौकिक ज्ञान से रुपए तो मिलते हैं ना, सब पूछा था। रुपए वह नहीं देता, वह तो पूर्व के पुण्य, छठी बार का, पूर्व के पुण्य हो तो आता है। अभी हमने वहां से पढ़ के बताया कि लौकिक पढ़ाई भी पूर्व के पुण्य से आता है ना, इतना उघाड़ लेके आया है ना। तो जैसा उघाड़ है वैसे उसको वो लाइन में जाने के पढ़ने की इच्छा भी वैसे होगी उसकी। वह कहाँ था ना, राजकोट में एक बड़ा बैरिस्टर था, लेकिन एक भी असील यानी मोक्किल नहीं आता था। बैरिस्टर बड़ा बैरिस्टर हुआ था लेकिन कोई असील आए नहीं, और ये बैरिस्टर एक मुमुक्षु, इनको असील का पार नहीं यानी कि ज्यादा मजदूरी थी, बहुत कठिन काम रामजी भाई यह शरीर तो मिट्टी जड़ है, परद्रव्य है, स्वद्रव्य से भिन्न परद्रव्य है, और अंदर क्षोभशम है वह भी वास्तव में तो परद्रव्य है, क्योंकि आत्मा में है नहीं, और वो कर्म का निमित्त बनता है उसके अंदर, है ना। आत्मा का तो परम पारिणामिक स्वभाव है, और ये सब नैमित्तिक भाव है अन्य सब। पर की अपेक्षा से क्षोभशम को भी परद्रव्य कह दिया है। कौन सी पर की अपेक्षा? ज्ञानावरण की अपेक्षा आ गई यहाँ। स्व के आश्रय से जो ज्ञान हो वह तो सम्यक ज्ञान है, वह तो आनंद रूप है। ऐसी बात सुनने वाले को कठिन पड़े, सुनने वाले 5,000-10,000 आदमी इकट्ठे हो, उसे ऐसा लगे कि ये क्या कहते हैं। श्रोता कहते ऐसा सुनने के लिए मुंबई में बहुत इकट्ठे होते हैं, विदेशी वहां तो इकट्ठे होते हैं, अब तो होते हैं, आहा हा, उनके कारण तो इतने लोग, वो तो वो क्या कहते वो समझने लगे ना, कि जिसको द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, ये क्या कह रहे, उसके बाद जब तक नहीं मालूम होती है। हम भी पहले पहले बार सुनते थे, क्या कहते ऐसा लगता था। जब उनके शिष्य बाबू वे मेहता या अन्य जो वो सब समझाते कि गुरुदेव ने ऐसा समझाया, ये ऐसा कहते, ये द्रव्य गुण पर्याय ऐसा है, तब जाके गुरुदेव क्या कहते वो समझने आने लगी बात।
वास्तव में मेरे को पक्का मालूम है कि ये बुलंदशहर वाले जो थे, क्या नाम है,
कैलाशचंद जी बुलंदशहर
वाले, वे तो विरोध करने गए थे उनको, पंडित बाबू वे में तो वहां मूल दिगंबर है, और ये कहाँ से आया और अपने को सिखावे, और वहां जाते ही उनकी बात सुन के ही इतने ठंडे हुए कि उनके पट चीज बन गए। ये तो कैलाशचंद जी स्वयं कहते थे कि मैं तो मुनि बनने जा रहा था,
और 3 महीने मुनिपंथ मुनियों के साथ वो घूमे थे,
फिर ऐसा लगा कि
संघ में घूमे थे 3 महीने तक।
हम मूल दिगंबर है और ये हमारे को समझा रहे, गए और वहाँ के हो गए।
उन्होंने तो हिंदुस्तान के छोटे छोटे गाँव में जाकर कितना प्रचार किया, उनके इतना किसी ने नहीं किया आज तक।
लोग कहते थे कि सोनगढ़ नहीं जाना, और लोगों के टेंडेंसी ऐसी कि नहीं जाना, बोले वहाँ जावे। और क्यों 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 नहीं जाना, अरे जो वहाँ जाता है वो उसी का हो जाता है, वापस नहीं आता है ऐसा। तो लोगों को और जैसा बोले बेटा दारू मत पी, क्यों क्यों नहीं, दारू बहुत खराब है, अच्छा देखो तो सही, टेस्ट करे और आगे बढ़े। तो ये दारू नहीं, ये तो दारू से छुटकारा पिलाने की बात है, भव से छुटकारा मिलाने की बात है।
तो नहीं, थोड़ा भी जिसको बुद्धिमान है वो तो कहते क्या कहते जरा देखे तो सही, फिर हम जाके उनका विरोध करेंगे जो उनका पहले सुन तो ले। वो आई थी ना अपने यहाँ द्रोणगिरी में, हम गए थे 2003 में, दशलक्षण हमने वहाँ किया था। वहाँ एक ब्रह्मचारी बहन आई थी, वो तो एमए हुई थी, और एक किसी मुनियों के उसमें से आई थी, तो उन्होंने सुना कि ये लोग कुछ कोई आने वाले हैं, तो ऐसे सारे प्रश्न लेके आई थी कि ऐसा कांजी स्वामी ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा हमने सुना है, तो आप क्या कहते हैं, हम प्रत्यक्ष सुनना चाहते हैं उनके मुख से। तो जो बात है उस सिद्धांत प्रवेशिका इन्होंने ली थी, मैंने तो करना नियोग परिचय लिया था, तो उसमें यह तो कोई सत्य बात बता रहे, आप तो आगम की बात बता रहे, कहीं कोई यानी विरोध तो है ही नहीं है, तो लोग ऐसा क्यों कहते। अभी जो विरोध करने वाले अपनी ओर से जो कुछ विरोधी बात बताते उसमें कोई क्या करे। एक दो दिन के लिए आई थी, पूरे 10 दिन रही थी वहां पर,
और वो आखिर के दिन में बहुत बारिश हुई, घोड़ापुर बोलते ना,
घोड़ापुर
वहाँ वैसा ऐसे
ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा
था, आर्क हो ऐसा ऊपर वो ब्रिज था, हम ब्रिज के उस तरफ थे, वो इस तरफ रहते थे, और इतना पूर आया
वो तो गांव के गांव कट हो जाते हैं ना,
के ऊपर से पानी जाने लगा, लेकिन वो तीन चार पांच घंटे में तो घर में गई, तो उसके घर में इतना बड़ा अजगर निकला
बेड के नीचे। नदी का पानी सब जगह घरों घरों में आया था ना। देखो अभी आगे अभी है थोड़ा टाइम। देखो पेज नंबर 83 पर जहाँ बोल लिखा है ना वहां से,
यहाँ मैं सत्य बात समझी इसलिए बच गई।
यहाँ इस गाथा में सहज सुख का साधन भूत, आत्मा का स्वाभाविक आनंद का साधन भूत, ऐसा यही महाप्रत्यक्ष ज्ञान भावनीय है। यह ज्ञान भावना में लेना है। तो यह भावना कब होती है? अपने आत्मा का अवलंबन लेकर, त्रिकाल का अवलंबन लेकर। अपने आत्मा के नहीं, त्रिकाली जो स्वभाव भाव है उसी को आत्मा कहा। सम्य दर्शन ज्ञान हो वह भावना है। भावना ने उसमें एकाग्रता करके प्रकट करना, ये भावना, खाली हमको ऐसा हो ऐसा हो ऐसा, वो भावना नहीं, मनोरथ करते बैठना वो भावना नहीं कहा। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, आत्मा आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप का स्पर्श करके जो सम्यक ज्ञान हुआ, उसमें उसकी भावना करने पर यानी उसी में स्थिर होने पर अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान होता है। यह कोई व्रत करके तप करते करते केवल ज्ञान होता है ऐसा है नहीं, ऐसा आशय समझना। लो ठीक, यानी वो ज्ञान को ही ज्ञान में प्रतिष्ठित करके ना, कब तक हो तो जब तक केवल ज्ञान हो जाएगा। अब इसी प्रत्यक्ष ज्ञान को पारमार्थिक सुख रूप बतलाते हैं, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान ही अतीन्द्रिय आनंद रूप है, यानी पारमार्थिक सुख। लौकिक सुख जो इंद्रिय सुख को जो लोक मानते हैं वो सुख है ही नहीं है। देखा, इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है और परमार्थ स्वरूप प्रत्यक्ष आत्मा का ज्ञान है वह सुख रूप है, उसमें आनंद है। यह विषय वासना आदि इंद्रिय की ओर का लक्ष्य है, उसमें ज्ञान होता है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, वह सब दुख रूप है। पैसा कमाने में जो ज्ञान करता है वह ज्ञान दुख रूप है। भाई रसोई करने में होशियार हो, पापड़ करे बड़ी करे, दूसरा क्या कहते हैं, आप लोगों की भाषा भी भूल जाते हैं, पुडला, पुडला करते ना, पुडला पुडला करते हैं, तो उसमें घी ऊपर नहीं डालते, पुडला की चारों ओर डाले होशियार हुए तो पुडले अच्छा बना सकती हैं। अज्ञान है, विपरीत मान्यता है। हा हा, ये गुथने का काम करते हैं ना, क्या कहते हैं, तोरण, तोरण में मोती गुथने का काम करते हैं, वह सब ज्ञान कुज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान कुज्ञान है, दुख रूप है। तो कहते लौकिक में होशियारी गिनी जाती है कि हम इतने कितने कितने कला, 64 कला, कितनी 64 कला होती है ना। गुरुदेव श्री, दुनिया पागल है तो पागल की प्रशंसा करेगी, पागल में जो ज्यादा पागल होता है उसे बड़ा कहते अब इसी प्रत्यक्ष ज्ञान को पारमार्थिक सुखरूप बतलाते चाहिए, बदलाते नहीं बतलाते तो चाहिए। ऊपर के पैराग्राफ में था, देखो बतलाते हैं कहते हैं, हाँ द के बदले तो करो। स्व के आश्रय से प्रत्यक्ष ज्ञान हो वह सुखरूप है। बात को कहाँ ले गए। दया दान व्रत भक्ति आदि शुभ उपयोग तो बंधन का कारण है, यह तो संसार का कारण है, परंतु यह इंद्रिय ज्ञान भी संसार का कारण है। 58 गाथा पूरी हुई। ये एक वाक्य आगे के पेज पर चला गया है। गाथा पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट 59 नंबर की। अथ एतद एव प्रत्यक्षम पारमार्थिक सौख्यत्वेन उपक्षिपति। यानी यही पारमार्थ से वो तो सुखरूप है, उसके बाद यहाँ बताएंगे। हाँ, अब आज प्रत्यक्ष ज्ञान ने पारमार्थिक सुखपणे दर्शावे छे, नेक्स्ट पेज पर लिखा है। हम पढ़े गाथा पढ़ेंगे। जादम सयम समंतम नानमणंतत्थ विठ्ठलम विमलम रहिदम तु ओग्गहादिहिम सुहंति एगंतियम वणिदम जातम स्वयं समंतम ज्ञानमनंतार्थ विस्तृतम विमलम रहितम तु अवग्रहादिभिः सुखमिति एकांतिकम वणितम स्वयमेव जात समंतार्थानंतमा विस्तृतने अवग्रह इहादि रहित निर्मल ज्ञान सुख एकांत छे। अन्वयार्थ नेक्स्ट पेज पर है, 86 पर। अन्वयार्थ पढ़ लेते अभी हम। स्वयं जातम, जाते ने उत्पन्न होना, पोता थी उपजतु। समंतम, समंत अर्थात सर्व प्रदेशेथी जानतु। अनंतार्थ विस्तृतम, अनंत पदार्थों में विस्तृत, यानी अनंत पदार्थों को जानने वाला है। विमलम, विमल तू, अने अवग्रहादि भी रहितम। हमने जो देखा था इंद्रिय ज्ञान में अवग्रह, यहाँ वाय धारणा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्रकार होते उसमें, तो अवग्रहादि थी रहित ज्ञानम एवं ज्ञान एकांतिकम सुखम, एकांतिक सुख छे, यानी वो सुख ही है, एकांत से वो सम्यक एकांत है। इति भणितम एम सर्वज्ञ देवे कहू छे। फिर से गुजराती पढ़ते। स्वयं पोता थी उपजतु, समंत अर्थात सर्व प्रदेशे थी जानतु, अनंत पदार्थों में विस्तृत, विमल अने अवग्रहादिथी रहित एवं ज्ञान एकांतिक सुख छे। किसने कहा? एम सर्वज्ञ देवे कहू छे। टीका बड़ी कल पढ़ेंगे, क्योंकि वो फास्ट फास्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सुवाणी मस्तकनम सदा देत हो गुरु। वीरेश भाई,
नमो अरिहतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो वज्रनम, नमो लोहे सब सावन, नमो अरिहतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो वज्रनम, नमो लोहे सब सावन, नमो अरिहतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो वज्रनम, नमो लोहे सब सावन।